हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 109 शिविका के दिए इस प्रस्ताव की उम्मीद हर्षिता को बिल्कुल नहीं थी, इसलिए ये प्रस्ताव सुनने के बाद उसने बहुत ही हैरानी से कहा, व्हाट डी, आपकी कंपनी का फैशन शो नहीं? नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ, और वैसे भी मुझे कोई अनुभव नहीं है। आप मुझे मुख्य मॉडल बनने का प्रस्ताव कैसे दे सकती हैं? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर्षिता को इतना हैरान परेशान देखकर शिविका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है ये, इस बारे में इतना मत सोचो हर्षिता, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकती हो। हर्षिता ने उसकी बात पर थोड़ा झिझकते हुए कहा, अच्छा ठीक है दी, बट आप एक काम करो, मुझे साइड में जो मॉडल्स होती हैं, अगर उनका भी रोल मिल गया तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे तो बस एक प्रोमोशनल वीडियो और फोटोज ही चाहिए, वो भी मेरे बहुत काम आएंगी। शिविका ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी कोई अनुभवी कैसे होता है, कहीं ना कहीं से तो उसे पहला मौका मिलता ही है, तो बस समझ लो यही तुम्हारा पहला मौका है। हर्षिता थोड़ी भावुक होते हुए बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको मुझ पर इतना भरोसा है और आप मुझे ये अवसर देना चाहती हैं। लेकिन इतना बोलते हुए हर्षिता चुप हो गई। शिविका ने उसकी तरफ देखा। हर्षिता ने मना करते हुए कहा, बट दी, मैं सब कुछ अपने दम पर हासिल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई भी मुझे इस बात के लिए ताना मारे कि आपने मुझे लॉन्च किया और पहला ब्रेक दिया और मैं खुद से कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ। शिविका ने बहुत ही गर्व महसूस करते हुए कहा, वाह, सेल्फ रिस्पेक्ट, आई लाइक इट, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियाँ पसंद है हर्षिता। पता है, मैं भी ऐसी ही थी। मैंने डैड की कंपनी से पहले और भी कई कंपनियों में नौकरी की थी और फिर उसके बाद ही मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन की। शिविका की ये बात हर्षिता को बहुत प्रेरणादायक लगी और वो बहुत रुचि लेकर उसकी बात सुन रही थी। हर्षिता को ये सब बताते हुए शिविका को एक विचार आया और उसने तुरंत कहा, अच्छा तुम एक काम करो, फिर तुम इसके लिए बिना मेरा नाम बताए सीधे कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे दो, कल सुबह ऑडिशन दे दो। मॉडल सिलेक्शन के लिए अभी भी समय है, अभी हमने मुख्य मॉडल फाइनल नहीं किया है। तुम जाकर अच्छे से तैयारी करके ऑडिशन दो और फिर देखो वे लोग तुम्हें किस पद के लिए लेते हैं, इसमें तो फिर मेरा कोई हाथ नहीं होगा ना। शिविका की ये सलाह उसे बहुत पसंद आई। ये बात सुनकर हर्षिता खुशी से उत्साह में उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच दी, यू आर द बेस्ट, आपने मेरी इतनी बड़ी समस्या इतनी आसानी से सुलझा दी, मुझे पता होता तो मैं पहले ही आपसे इस बारे में बात कर लेती। शिविका ने भी उसे गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड़की, और क्या, बातें और समस्याएं शेयर करने से ही तो सुलझती हैं। सब कुछ ऐसे अपने तक ही रखोगी तो फिर तनाव ही होगा और कुछ नहीं। उसकी इस बात पर हर्षिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो शिविका से बाकी सारी जानकारी पूछने लगी। शिविका उसे वो सब बता ही रही थी कि तभी काव्या वहाँ दौड़ती हुई आई और एकदम से शिविका के पैर में चिपक कर वहाँ खड़ी हो गई और बोली, मम्मा। काव्या की आवाज सुनकर शिविका ने अपना काम और हर्षिता के साथ चल रही चर्चा रोक कर बहुत ही प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। काव्या को अपनी गोद में बिठाने के बाद शिविका ने उसके गाल और माथे पर चूमा और फिर से हर्षिता की तरफ देखकर उससे बात करने लगी। वे दोनों इवेंट के बारे में बात कर ही रही थीं कि काव्या ने पूछा, मम्मा आप मासी के साथ बिजी हो? उसके सवाल पर शिविका ने हाँ में अपना सिर हिलाया। साथ ही शिविका के लैपटॉप में कुछ डिजाइन भी दिख रहे है जिस पर काव्या की नज़र पड़ी। उसने देखते हुए कहा, वाह ये कितना प्यारा है। काव्या भी अब काफी खुश होकर वो सब देख रही थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर हर्षिता और शिविका एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्करा दीं और फिर आपस में बात करने लगीं। लेकिन इस बार काव्या भी उनके बीच ही बैठी हुई कुछ न कुछ बोल रही थी। दूसरी तरफ समर का कोचिंग सेंटर। समर ने अपने कोचिंग सेंटर में वहाँ के मालिक और प्रमुख प्राध्यापक से इस बारे में बात कर ली थी कि उसे जल्दी यहाँ से निकलना है। एक घंटा पहले तो नहीं, लेकिन प्राध्यापक ने उसे आधा घंटा पहले जाने के लिए कह दिया था। 6:30 बजे तक समर ने अपनी सारी कक्षाएं खत्म कर ली थीं और फिर वो इस बारे में सोचने लगा कि वो अभी कॉल करके ऋषभ को इस बारे में बताए या फिर नहीं, और वो ये सोच ही रहा था कि तभी सामने से किसी का कॉल आ गया। उसने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा तो वो ऋषभ का नंबर था, क्योंकि करण के मोबाइल से उसने अपने फोन में भी उसका नंबर सेव कर लिया था। और फिर उसने कहा, इसके बारे में ही सोच रहा था मैं और इसकी कॉल भी आ गई। अपने मन में इतना बोलते हुए समर ने वो कॉल रिसीव की और फिर मोबाइल फोन अपने कान से लगाते हुए बोला, हेलो हेलो ऋषभ, उसके इस तरह से अटकने पर दूसरी तरफ से ऋषभ बोला, हाँ समर, क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? तुम व्यस्त हो या फिर अभी समय नहीं है क्या? अगर कुछ भी समस्या हो तो बता देना, मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी ही धुन में ऋषभ इतना कुछ बोल गया, लेकिन समर ने कॉल रिसीव करके थोड़ा सा अटकते हुए सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी उसे कुछ भी कन्फर्म नहीं था और वो थोड़ा सा कन्फ्यूज था, इसलिए ही उसने कॉल रिसीव करते हुए थोड़े कन्फ्यूजन से हेलो बोला। लेकिन ऋषभ उसकी बात सुनकर एक के बाद एक इतने सारे सवाल करता चला गया कि समर को उसकी बात बीच में काटते हुए बोलना ही पड़ा। समर ने बीच में बोलते हुए कहा, वो हो ऋषभ, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे कुछ बोलने भी दोगे या नहीं? और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, मैंने यहाँ पर बात कर ली है और मैं यहाँ कोचिंग सेंटर से बस निकल ही रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर ऋषभ बहुत खुश हो गया और उसका पता नहीं क्यों नाचने का मन कर रहा था, लेकिन वो नाच नहीं सकता था क्योंकि इस वक्त वो अपनी कार में था। अपनी खुशी थोड़ा कंट्रोल करते हुए उसने सामान्य आवाज में कहा, अरे रुको, तुम वहीं क्यों निकल रहे हो ऐसे अकेले? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें आना हो तो मेरे पास मैसेज कर देना, मैं कार भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानते, तुम्हारी जिद क्या करूं मैं इसका? इस पर समर ने बड़े ही आराम से कहा, हाँ मैंने भी तो मना किया था कि ऐसे रोज रोज कार भेजने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा खुद ही। ऋषभ ने रिक्वेस्ट और आदेश करने वाले मिले जुले अंदाज में कहा, प्लीज देखो मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता समर, पहले ही बात हो गई है ना हमारी, और अब तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर पैदल आने की तकलीफ उठाओ मेरे लिए, इसलिए प्लीज मान जाओ ना, वैसे भी ये कोई एहसान नहीं है, मैं तो बस ये सब अपने लिए कर रहा हूँ। समझाने की कोशिश करते हुए समर ने कहा, देखो मैं कोई तकलीफ नहीं उठा रहा हूँ, तुमने मुझे पैसे देने के लिए भी कहा है ना, तो ये मुफ्त सेवा नहीं है और ना ही कोई एहसान, तो बार बार ऐसा कुछ भी मत बोलो और ना ही ऐसा सोचो। ऋषभ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ मुझे पता है मुफ्त नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा, बस तुम कैसे भी मुझे पास करवा दो और इस कॉलेज के झंझट से छुटकारा मिले मेरा, ऋषभ चिढ़ते हुए बोला। उसकी बात पर समर हंस दिया और बोला, अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट वेट कर रहा हूँ, अगर उतनी देर में तुम्हारी कार यहाँ पर आती है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं खुद ही आ जाऊँगा। समर के राजी होते ही ऋषभ ने कहा, 10 मिनट भी नहीं, बस 5 मिनट के अंदर कार तुम्हारे गेट पर होगी, वैसे तुम मेरी कार पहचानते तो हो ना?
इस पर समर थोड़ा सा सोचते हुए बोला, हाँ वो जिसमें मैं उस दिन तुम्हारे साथ आया था, वो काली रंग की। उसके सही जवाब पर ऋषभ ने कहा, हाँ ठीक है वही वाली। ये बात सुनकर समर थोड़ा चौंकते हुए बोला, वही वाली मतलब तुम्हारे पास और भी कार है क्या? ऋषभ ने बड़ी ही लापरवाही से कहा, नहीं मेरे पास नहीं, वो सारी डैड और दी की कार हैं, लेकिन अब मैं उनका बेटा और भाई हूँ तो मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, नॉट अ बिग डील। ऋषभ ने काफी लापरवाही से बोला। उसकी बात सुनकर समर कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूजन के साथ साथ ही उसे काफी हैरानी भी हुई। वो ऋषभ की कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी को समझ नहीं पाया और उसके बारे में ना चाहते हुए भी थोड़ा और सोचने लगा, लेकिन फिर इतनी बात करके उसने कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने मोबाइल में समय देखा। समय देखते हुए उसने 10 मिनट कार का इंतजार करने का सोचा और फिर वहीं कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी किसी छात्रा की बाइक पर बैठकर अपने फोन में गेम खेलने लगा। और सच में जैसा कि ऋषभ ने कहा था, 5 मिनट भी नहीं हुए और कोचिंग सेंटर के गेट पर एक बड़ी सी काली मर्सिडीज कार आकर रुकी और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, जिससे कि समर का ध्यान उस तरफ हुआ और उसने फिर समय देखा और सिर्फ 5 मिनट ही बीते थे, इसलिए समय देखकर तुरंत ही उसके मुंह से निकला, ओ माय गॉड, सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, सच में ये लड़का पागल है। इतना बोलते हुए उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और वो मोबाइल फोन अपनी जेब में रख कर उठकर खड़ा हो गया और कार की तरफ ही बढ़ने लगा। ड्राइवर भी समर को अच्छी तरह से पहचानता था क्योंकि वो ऋषभ के साथ 2-3 बार यहाँ पर आ चुका था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। समर उस कार की तरफ बढ़ा और वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठने ही वाला था कि तभी पीछे वाले मर्सिडीज कार के पीछे का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और समर का ध्यान उस तरफ हुआ। वो दरवाज़ा खुलते देखकर समर ने सोचा कि शायद उसे पीछे बैठना है, इसलिए वो चुपचाप पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो कार के अंदर आया, अपने साथ वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को देखकर उसके मुंह से एकदम से निकला, तुम ऋषभ, तुम यहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम ड्राइवर और कार को भेजोगे, फिर तुम भी यहाँ? तुम यहाँ पर कैसे आ गए और वो भी इतनी जल्दी? ऋषभ ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, समर हो गया तुम्हारा, और ये तुम कितनी बार तुम कहोगे, देख लिया ना, कन्फर्म हो गया, मैं ही हूँ। और वैसे भी मैं क्यों नहीं आ सकता, कार तो यहाँ पर आ ही रही थी और ये सीट भी बिल्कुल खाली थी, तो मैंने सोचा आज पहले दिन मैं खुद ही आ जाता हूँ अपने टीचर को लेने। क्रमशः